नमस्कार भारत, तारीख 28 अक्टूबर दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कैटालोनिया के राष्ट्रपति को किया बर्खास्त, संसद भंग, दिसंबर में चुनाव कराने का ऐलान। एक मंत्री की कथित सेक्स सीडी को लेकर चढ़ा छत्तीसगढ़ का सियासी पारा, एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुटी बीजेपी और कांग्रेस।
छवि को धूमिल करने का काम और चारित्रिक हनन का काम किया गया है।
आज रमन सिंह जी को इस्तीफा लेना चाहिए, न कि उसको बचाव करना चाहिए।
और विवेचना में होगी विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले की बात, जब मोहम्मद अली ने किया था फोरमैन को चित। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, विकास त्रिवेदी से। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कहा है कि वो कैटालोनिया की संसद को भंग कर रहे हैं। रखॉय ने कैटालोनिया में नई संसद के लिए फिर से चुनाव कराए जाने की बात कही। रखॉय ने कहा कि हालात सामान्य करने के लिए कैटालोनिया पर स्पेन का सीधा शासन जरूरी था। अब कैटालोनिया में 21 दिसंबर को फिर से चुनाव होंगे। इससे पहले कैटालोनिया की संसद ने वोट करके अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। वहीं स्पेन की सीनेट ने कैटालोनिया पर सीधा शासन लागू करने के पक्ष में वोट डाला। कैटालोनिया के हालात पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि एंटोनियो हालात पर नजर रखे हुए हैं।
For now, the Secretary General encourages all concerned to seek solutions within the framework of the Spanish Constitution.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो स्पेन के संविधान के दायरे में रहते हुए कैटालोनिया के मुद्दे पर समाधान निकालने जाने का प्रोत्साहन करते हैं। वो मानते हैं कि संकट का कानूनी तौर और राजनीतिक तरीके से हल खोजना चाहिए। महासचिव स्पेन में हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। ये थे फरहान हक के शब्द। इटली में एक व्यक्ति को खुद की एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी के बाद जानबूझकर 30 महिलाओं को एचआईवी संक्रमित करने के मामले में 24 साल की सजा सुनाई गई है। पेशे से अकाउंटेंट 23 साल के वॉल्टिनो तलूटो को साल 2006 से एचआईवी संक्रमण है। इसकी जानकारी होते हुए उन्होंने 52 महिलाओं के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सजा के ऐलान के बाद पीड़ित महिलाएं रोने लगीं। अभियोजन पक्ष ने तालुटो के लिए उम्र कैद की मांग की थी। ब्राजील में पहली बार विदेशी कंपनियों को मुनाफा देने वाले तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लगाई बोली प्राइवेट कंपनियों ने जीत ली है। अब तक ब्राजील में तेल क्षेत्रों को विकसित करने का काम सरकारी कंपनी पेट्राबोस करती थी। रियो और सायो पोआइलो में समुद्र से तेल निकालने के लिए लगाई गई बोली को जिन कंपनियों ने जीता है उनमें शेल, बीपी, स्टेट ऑयल और एक्सॉन मोबिल शामिल है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केनिया में चुनाव आयोग का कहना है कि जिन चार प्रांतों में शनिवार को चुनाव कराया जाना तय हुआ था अब वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के खतरों को देखते हुए ये चुनाव अब बाद में कराए जाएंगे। गुरुवार को चुनाव में पुलिस और विपक्ष के समर्थकों के बीच झड़पें हुई थी। विपक्ष ने इसे चुनाव का बहिष्कार किया। इन हिंसक झड़पों के चलते कई लोग मारे गए। केनिया की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता मुसाइला मुदावादी ने बीबीसी से कहा है कि इन झड़पों के लिए केनिया के चुनाव आयोग को जिम्मेदार है।
This is a situation where we all say that as Kenyan people we are not proud. This is one of the darkest moments in our history.
अभी जो हालात हैं केनिया के नागरिक होने के नाते हम सब कह सकते हैं कि हम फक्र महसूस नहीं कर रहे हैं। ये हमारे इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। कुछ दिन बाद वो आकर कहते हैं कि हाँ, हम चुनाव करवा सकते हैं। चुनाव आयोग प्रमुख के इस दोहरेपन से देश में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरन एक अवैध प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये थे मुसाइला मुदावादी के शब्द। बहरीन सरकार का कहना है कि मनामा के पास हुए एक हमले में पुलिसकर्मी की मौत और 8 लोग घायल हुए हैं। बम से किया ये हमला एक बस पर हुआ था जिसमें पुलिस अधिकारी सवार थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस हमले के पीछे कौन है। इससे पहले हुए हमलों के लिए बहरीन सरकार ने शिया मुस्लिम उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया था। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने देश की उत्तरी इलाकों में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान को 24 घंटे के लिए रोकने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस संघर्ष विराम से विवादित नियंत्रण वाले सभी क्षेत्रों में शांति बलों की तैनाती करने के लिए तैयार होने की समिति को अनुमति मिल जाएगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। जैसा कि आपने अभी विश्व समाचारों में सुना, स्पेन की सरकार और कैतालोनिया स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासन के बीच गोते लगाती रिश्तों की डोर टूट गई है। कल कैतालोनिया की संसद ने आजादी के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो स्पेन की सीनेट ने उन्हें मिली स्वायत्तता में कटौती कर दी और शासन की बागडोर सीधे अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कैतालोनिया के राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया और स्थानीय संसद भंग कर दी। दुनिया के ज्यादातर अहम देश स्पेन के साथ दिख रहे हैं। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी विकास त्रिवेदी।
कैटालोनिया की संसद ने जब अपनी आजादी का ऐलान किया तो बार्सिलोना की सड़कों पर झंडे लहराते लोग और आसमान में आतिशबाजी नजर आने लगी। लेकिन ठीक इसी पल बार्सिलोना से करीब 600 किलोमीटर दूर मैड्रिड में स्पेन की संसद ने सीनेट में कैटालोनिया की स्वायत्तता खत्म करने के पक्ष में फैसला लिया और कैटालोनिया की बागडोर सीधे अपने हाथ में ले ली। और इसके कुछ घंटों के भीतर ही स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कैबिनेट बैठक के बाद यह ऐलान किया कि वो कैटालोनिया की संसद और वहां के प्रमुख नेता कार्लेस पुजिमोंट को बर्खास्त करते हैं।
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21
मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने कैटालोनिया की संसद को भंग कर दिया है। आने वाली 21 दिसंबर को कैटालोनिया में फिर से चुनाव कराए जाएंगे। कल तक कैटालोनिया के नेता कार्लेस पुजिमोंट के पास ये मौका था कि वो वैधता की ओर लौटें और चुनाव का ऐलान करें। कैटालोनिया की बड़ी आबादी यही चाहती है, लेकिन कार्लेस ऐसा नहीं चाहते। ऐसे में स्पेन की सरकार हालात बेहतर करने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है। ये थे स्पेन के पीएम रखॉय के शब्द। वहीं कैटालोनिया के नेता कार्लेस पुजिमोंट ने आज़ादी का ऐलान को वैध बताते हुए कहा कि कैटालोनिया को एकजुट रहने की ज़रूरत है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी को हकीकत बना सकें। कार्लेस कहते हैं, आज हमारे देश की संसद एक ऐसी संसद जो 27 सितंबर को हुए चुनावों के बाद निकल कर आई है। आज ये संसद एक लंबी लड़ाई के बाद अपने कदम आगे बढ़ाती है। कैटालोनिया के नागरिकों को एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हम सभी अपने देश को संभाल के रखना होगा, खासतौर पर शांति और नागरिकों का कर्तव्य, जिसे हमने आज तक बिना किसी शक के निभाया भी है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक समाज का निर्माण करें। ये थे कैटालोनिया के नेता कार्लेस पुजिमोंट के शब्द। कैटालोनिया ने भले ही अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसे दुनिया के कई ताकतवर देश मान्यता नहीं दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने इस मसले पर स्पेन का साथ देने का फैसला किया है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने कहा है कि वो कैटालोनिया का अपनी आज़ादी का ऐलान करने को मान्यता नहीं देते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे विकास त्रिवेदी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अगली खबर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री की कथित सीडी को लेकर राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तेवर भी तीखे हैं। इस बीच खबर है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले को लेकर गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा के लिए रिमांड हासिल कर लिया है और वो कुछ वक्त बाद रायपुर पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट के साथ आलोक पुतुल।
पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति के मैदान में बयानबाजी की तलवारें खिंची हुई हैं और सियासी दलों में घमासान मचा हुआ है। शुक्रवार की सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ वह देर रात तक चलता रहा। कांग्रेस पार्टी कल से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है और आज वह कथित सीडी में दिखाए गए छत्तीसगढ़ के मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर रायपुर में प्रदर्शन करने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
देखिए, जिस प्रकार से संजय जोशी का इस्तीफा हुआ था, जिस प्रकार से राघव जी का इस्तीफा हुआ था, आज रमन सिंह जी को इस्तीफा लेना चाहिए, न कि उसको बचाव करना चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में सफाई देने के साथ साथ राजनीतिक हमला करने का भी कोई अवसर छोड़ नहीं रही है। शुक्रवार की शाम पार्टी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य के 8 मंत्रियों के साथ पत्रकार विनोद वर्मा और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे।
जिस प्रकार से हाल सिटी बना करके छवि को धूमिल करने का काम और चारित्रिक खनन का काम किया गया है, ऐसे विनोद वर्मा के खिलाफ में थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी और मंत्री हमारे सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, साथ ही उनको जो संरक्षण देने वाले हैं इसकी भी जाँच हो।
मंत्री के पक्ष में संगठन और सरकार उतरी तो राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने में देरी नहीं की।
दिल से मुझे चोट पहुंचती पीड़ा होती है कि हम क्या इतने नीचे स्तर तक गिर गए हैं। सत्ता में आने के लिए कैसे कैसे काम हो सकते हैं, ये निकृष्टतम काम की श्रेणी में डालता हूँ। और शोभ होता है हम लोग राजनीति में काम करने वाले लोगों की, पूरे जीवन में काम करने वाले लोगों को ऐसे कदम उठाने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही दुखद है।
लेकिन इन सबों से अलग राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की चिंता यही थी कि कथित स्कैंडल वाले सीडी का हाल भी पुरानी सीडियों जैसा ही न हो जाए।
सीडी बनाने वाले ने कोई षड्यंत्र रच के, कोई खेल खेलने के लिए, जैसा पहले हमारे छत्तीसगढ़ में सीडी कांड बहुत हुए हैं और किसी सीडी कांड का कोई निष्कर्ष अभी तक निकला भी नहीं है।
सीडी और उससे जुड़े तमाम तथ्यों की जाँच में कितने दिन, महीने और साल गुजरेंगे ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस सीडी के बहाने अभी कुछ दिन तो छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ ही रहेगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के तरीके को लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इनमें वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भी हैं, उनसे बात की हमारे साथी संदीप राय ने।
ये ऐसा लगा मुझे प्रथम दृष्टया कि ये कोई और हुकूमत है जो भारत के नागरिकों पर राज कर रही है। दूसरा ये भी लगा कि जैसे इमरजेंसी का राज था कुछ दिनों के लिए, कुछ उस तरह का पिकअप करना लोगों को रातों रात जाकर। और चूंकि मैं उस समय स्टूडेंट था तो हमने देखा था तो उस दौर में कैसे रात को अचानक दस्तक दी जाती थी दरवाजे पर, और पता चला कि दस्तक देने के साथ जो खुलता था दरवाजा उससे पूछा जाता था कौन है आप, और गिरफ्तार कर लिया जाता था।
कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्हें रात में उठाया गया पत्रकारों को डराने धमकाने की एक कोशिश है, आपको क्या लगता है?
बेशक मुझे नहीं लगता कि केवल इंडिविजुअल विनोद वर्मा का ही ये मामला है या उनको टेररिज करना या उनको भयभीत करने का, ये एक भय का माहौल बनाना इसके पीछे मकसद है। देखिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी का एक बड़ा सेक्शन जो है अपने देश में संजोगवश या दुर्भाग्यवश वो पहले से ही काफी झुका हुआ है, और जो लोग नहीं झुके हैं मुझे लगता है उनके लिए संदेश है कि आप भी झुको और नहीं तो फिर ये स्थिति आएगी।
क्या इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का कोई मॉडस ऑपरेंडी आप देखते हैं, क्योंकि पिछले समय में कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाकर इसी तरह की कार्रवाइयां की गई थी?
देखिए मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट जो कमेटी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इसके अलावा जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाएं हैं, ये भी कह चुकी हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो हालत है वो लगातार डिटोरिएट कर रही है। और पिछले बार जो आंकड़ा आया था उसमें भारत जो है 180 मुल्कों की लिस्ट में 136वें नंबर पर था व्यक्ति की आजादी पर, उसमें भी छत्तीसगढ़ का जो मामला है वहां अनेक पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, पहले अनेक पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई हैं। किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई मामला है आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप उससे पूछताछ कीजिए, बट ये तरीका नहीं हो सकता है जो तरीका छत्तीसगढ़ पुलिस ने अडॉप्ट किया है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। यहाँ के गांव बिजवाड़ा की पंचायत ने औरतों के हक में एक फैसला सुनाया है। फैसला ये है कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा वहां शादी भी नहीं होगी। सुनिए सरोज सिंह की रिपोर्ट।
इसलिए लड़कियों के लिए शौचालय बहुत जरूरी है, और मैं तो शादी भी वहीं पर करूंगी जहां शौचालय होगा, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करूंगी इस घर में।
बागपत जिले के बिजवाड़ा गांव की पायल उन तमाम लड़कियों में शुमार हैं जिन्होंने तय किया है कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा वहां शादी नहीं होगी। लेकिन पायल अकेली नहीं है, गांव की हर महिला इस फैसले से खुश है।
मैं पंचायत का पूरा समर्थन करती हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि वे इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। लड़कियों का बाहर जाना बहुत ही गलत है, आजकल बीमारी इतनी चल रही है वो सब इसी का कारण है। पंचायत को ये भी देखना चाहिए कि जो गरीब है जो शौचालय नहीं बनवा सकते उनकी हेल्प करे और शौचालय बनवाए।
अब गांव की पंचायत ने फैसला लिया है कि शौचालय के बिना शादी ब्याह जैसे रिश्ते नहीं होंगे। आखिर ऐसा फैसला करने के पीछे पंचायत की मंशा क्या थी? गांव के मुखिया अरविंद प्रधान कहते हैं कि महिलाओं के लिए जीवन वाकई कष्टकारी हो गया था।
ये इसलिए फैसला लिया गया कि बहु बेटियों की इज्जत के लिए शौचालय बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव देहात में दो बेटी शाम होने के बाद ही शौचालय जा पाती है। 90% के करीब प्रोजेक्ट हैं, बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सहायता आपस में व्यक्तिगत सहायता से बनवाए जा रहे हैं।
बागपत जिले के विजवाड़ा गांव में तकरीबन 1000 से 1200 लड़कियां हैं जिनकी शादी मुजफ्फरनगर और शामली जिले में होती है। वहां के कुछ 20 से 25 फीसदी घर ऐसे हैं जहां अब भी शौचालय नहीं है। पंचायत के इस फैसले के बाद स्थानीय महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सहमत हैं, लेकिन गांव में रहने वाले सुरेंद्र मानते हैं कि ये फैसला ज्यादा सख्त है।
बात से सहमत हूं। उन्होंने निर्णय अच्छा लिया। थोड़ी दिक्कतें ये है कि पानी की बर्बादी वैसे बचे, क्योंकि शौचालय होंगे तो पानी तो बर्बाद हो ही गया थोड़ा, नहीं इतना बड़ा तो नहीं, उसको पंचायत ये देखे कि इसका जिसका ब्योक नहीं है, जो गरीब आदमी है उसका लोग इकट्ठा हो गए उसको शौचालय बनवाए उसके यहाँ।
तो क्या बागपत पंचायत के फैसले के बाद मुजफ्फरनगर और शामली जिले के लड़के कुंवारे रह जाएंगे? मुजफ्फरनगर के लुसाना गाँव के मुखिया अनिल प्रधान मानते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।
नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, और इस फैसले से तो हम भी संतुष्ट हैं। गांव है, मैं हमें पता है हमारे एरिया में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे ये नहीं है। छोटे मोटे गांव हैं, इन गांवों में है जहां पे ध्यान ही दिया जाता।
पंचायत का ये फैसला स्वच्छता अभियान की दिशा में एक कदम हो सकता है। इस फैसले के बाद दिक्कत ना आए इसके लिए जिस किसी घर में शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनवाने के लिए सामूहिक अनुदान देने के लिए पंचायत भी तैयार है।
रिपोर्ट सुना रही थी सरोज सिंह और विकास त्रिवेदी तैयार हैं दिल्ली से छपे अखबारों के साथ। क्या सुर्खियां हैं विकास?
वात्सल्य विनोद वर्मा की गिरफ्तारी की खबरें लगभग सभी अखबारों में, हर अखबार उसको कोने में या जगह दे रहा है। तस्वीर के साथ भी कुछ अखबारों ने जगह दी है इसको। सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार को उठाते हैं तो हिंदुस्तान अखबार की सबसे पहली खबर जो है वो यह है कि पाक आतंकी मारे वरना हम मारेंगे। ये अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि आतंक पर पाकिस्तान का ढुलमल रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, सख्त कदम उठाना ही होगा। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कल तबीयत खराब हो गई थी, तो हिंदुस्तान इस खबर को भी देता है कि अस्पताल में भर्ती हैं वो। इसके अलावा एक खबर जो सभी अखबारों में देखने को मिल रही है वो ये है कि महाकाल का अभिषेक अब आरओ के जल से होगा।
जी, भगवान को भी आरओ के जल समर्पित किया जाए।
हाँ, इसके अलावा बात करें तो आधार अनिवार्यता पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुँची हैं, तो इस खबर को भी दिया है इसने हिंदू।
ये मैं कई अखबारों में देख रहा हूँ
जी, और इसको लेकिन द हिंदू जो है उसने ममता बनर्जी से जुड़ी एक खबर दी है, दूसरी दी है कि जो अब केंद्र सरकार है कि वो पश्चिम बंगाल से ट्रूप्स को हटा सकती है क्योंकि चुनाव होने हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी प्रॉब्लम है।
जी, बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी।
बीबीसी इंडिया बोल।
इतिहास को फिर से परिभाषित करने की कोशिश, सवाल उठाए जा रहे हैं टीपू सुल्तान से लेकर ताजमहल और मुगलों की विरासत तक। इतिहास पर राजनीति क्यों और क्या हैं इसके खतरे? बीबीसी इंडिया बोल में इस शनिवार 28 अक्टूबर को इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अगर आप बॉक्सिंग के मुरीद हैं और मोहम्मद अली का नाम भर आपको रोमांचित कर देता है तो अगले 10 मिनट इतिहास की गलियों से गुजरते हुए आवाज के सहारे आप अपनी आंखों के सामने बॉक्सिंग के सबसे उम्दा मुकाबले की तस्वीर उभरती देख सकते हैं। हेवीवेट बॉक्सिंग का ये मुकाबला 43 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 1974 को जायर की राजधानी किनशासा में हुआ था। आज की विवेचना में हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल याद कर रहे हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले को जिसे बॉक्सिंग का अब तक का महानतम मुकाबला और रंबल इन द जंगल भी कहा जाता है।
So the stage is set. We're just about ready to begin. Round one, the heavyweight championship of the world. Ali ready, Foreman ready. We're waiting for the opening bell.
29 अक्टूबर 1974, जैसे ही हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली ने जायर की राजधानी किनशासा के 20th of May स्टेडियम की रिंग में कदम रखा, 60,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम ने एक स्वर में गर्जना की, अली अली बोमाये, अली अली बोमाये। मतलब था अली उसे जान से मार दो। समय था सुबह 3:45। जी हाँ, आपने सही सुना, सुबह 3:45। क्या थी इसकी वजह? हमने पूछा मोहम्मद अली के बॉक्सिंग करियर को नजदीक से देखने वाले नॉरिस प्रीतम से।
अब यूएस में बाउट नहीं कराई, लेकिन देखने वाले तो बहरहाल यूएस में ही थे, तो जो टाइमिंग थी वो सूट करती थी कि उस वक्त वहाँ पीक आवर्स हों। जैसे कि हम आमतौर पर अक्सर देखते हैं कि खाली स्टेडियम में 2-3 बजे भारत में क्रिकेट हो रहा है, और हम सोचते हैं क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो ग्राउंड में देखने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि टीवी स्क्रीन में, बेशक आप उसे इडियट बॉक्स कहें, लेकिन उस पर बैठ के देखने वालों के लिए होता है। इसलिए वो 4 बजे बाउट रखी गई थी और लाखों लोगों ने देखा, और अंदर स्टेडियम में उस हॉल में 60,000 लोग, जो आज भी एक बड़ी तादाद मानी जाती है। उस वक्त सोचिए कि 1974 में क्या रहा होगा वो, जबकि ना ट्विटर था, ना गूगल था, ना इंटरनेट था, ना एक दूसरे को लोगों ने बताया। अगर आज की तारीख में वो बाउट होती तो मेरे ख्याल है 1 महीने तक वो ट्रेंड करती रहती बाउट ही ट्विटर पे।
इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता, अली ने जॉर्ज फोरमैन से कहा, तुम मेरे बारे में तब से सुन रहे हो जब तुम बच्चे हुआ करते थे, अब मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ, तुम्हारा मालिक, मुझे सलाम करो। उस समय लोगों को पता नहीं चल पाया था कि अली कह क्या रहे हैं। लोगों ने मोहम्मद अली को कुछ कहते हुए जरूर सुना था, और उनके होठ जॉर्ज फोरमैन के कान से सिर्फ 12 इंच दूर थे। फोरमैन की समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। उन्होंने अली के ग्लव्स से अपने ग्लव्स टकराए, मानो कह रहे हों शुरू करें। तभी अली ने अचानक अपनी दोनों कलाइयों को सीधा किया, सावधान की मुद्रा में आए, आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पहला मुक्का अली ने चलाया और उनके दाहिने हाथ का पंच फोरमैन के माथे के बीचों बीच लगा। राउंड खत्म होते होते फोरमैन अली को धकियाते हुए रिंग के रस्सों की तरफ ले गए। अली पीठ के बल रस्सों पर गिरकर फोरमैन के बलिष्ठ मुक्कों का सामना करने लगे। बगल में बैठे अली के कोच एंजेलो डंडी पूरी ताकत से चिल्लाए, गेट अवे फ्रॉम देयर।
Shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left hook. Zaire Africa. That punch did no damage. That one did. And vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman. Has Ali in the corner. Ali dances.
मुकाबला शुरू होने से पहले ही मोहम्मद अली फोरमैन पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुके थे। एक दिन पहले ही उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में डींग हाकी थी।
I'm so fast, I can run through a hurricane and don't get wet. I'm so fast, last night I cut the light off in my bedroom.
मैं इतना तेज हूँ कि अगर मैं तूफान के बीच में दौड़ूं तब भी मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। मेरी तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल रात मैंने स्विच ऑफ किया, और इससे पहले कि अंधेरा होता मैं कूद कर अपने बिस्तर पर पहुंच चुका था।
लेकिन इस मुकाबले में पहले 1 मिनट तक अली ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उन्होंने फोरमैन पर शाब्दिक बाण चलाने शुरू कर दिए। अली अपनी आत्मकथा द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी में लिखते हैं,
मैंने फोरमैन से कहा, कम ऑन चैंप, अब तुम्हारा मौका है, मुझे दिखाओ तो सही क्या क्या है तुम्हारे पास। अभी तक तुम किंडरगार्टन के बच्चों पर मुक्के बरसाते आए हो। ये कहते ही मैंने एक मुक्का उसके मुंह के बीचों बीच जड़ दिया। मैंने कहा, ये लो, एक और झेलो। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं अब तक का सबसे तेज हैवीवेट मुक्केबाज हूं। आधा राउंड खत्म हो चुका है और तुम एक भी ढंग का मुक्का मुझे मार नहीं पाए हो।
Muhammad is allowing Foreman to come in on him, talking to him. Angelo Dundee screaming from the corner, Ali, get off those ropes. But Ali continues to talk to Foreman.
Ali अपने पीछे बन्नी ब्राउन की आवाज सुन पा रहे थे, डांस चैंपियन डांस। एंजेलो डंडी भी चिल्ला रहे थे, मूव अली मूव, गेट ऑफ द रोप्स चैंप। अली लिखते हैं,
मैं अपने लोगों से कैसे कहता कि मेरा रस्सों से उठने का कोई इरादा नहीं है। राउंड खत्म होते होते मैंने उठकर जॉर्ज के सिर पर 3 सीधे जैब लगाए। मैंने ये भी सोचा कि मैं अपना शिक्षा देने का प्रोग्राम जारी रखूं, नहीं तो ये सोचने लगेगा कि इसके मुक्कों ने मेरी बोलती बंद करा दी। मैंने मुक्का चलाते हुए फोरमैन पर कटाक्ष किया, बस तुम्हारे मुक्कों में इतना ही दम है, इससे ज्यादा तेज तुम नहीं मार सकते।
जेरी आइजनबर्ग उस समय एक युवा संवाददाता थे और न्यू जर्सी स्टार लेजर ने उन्हें यह मुकाबला कवर करने के लिए किनशासा भेजा था। आइजनबर्ग ने बीबीसी को बताया,
Here we go.
When the bell rang, Ali got hit, so he immediately retreated to the ropes. This is the genesis of the world famous rope-a-dope.
जैसे ही राउंड शुरू होने की घंटी बजी, मोहम्मद अली तुरंत रस्सों की तरफ चले गए। अली की दुनिया भर में मशहूर रोप ए डोप तकनीक की शुरुआत यहीं से हुई। फोरमैन के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि वो किसी भी ग्लव को अपने मुक्कों से भेद सकते हैं। मुक्केबाजी में अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो पॉइंट जीतने से ज्यादा आपका नुकसान होता है। थोड़ी ही देर में फोरमैन की बाहों में दर्द शुरू हो गया। इस दौरान अली उनसे लगातार बातें कर रहे थे जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा।
दिलचस्प बात यह थी कि जब भी अली फोरमैन पर हमला करते स्ट्रेट राइट मारते। जाने माने साहित्यकार नॉर्मन मेलर भी उस समय ये भिड़ंत देख रहे थे। वो अपनी किताब द फाइट में लिखते हैं,
अली ने पिछले 7 सालों में इतने प्रभावशाली मुक्के नहीं बरसाए थे। चैंपियन आमतौर से दूसरे चैंपियनों पर दाहिने हाथ से मुक्का नहीं मारते, कम से कम शुरू के राउंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक पंच होता है। मुक्केबाजी के जानकार जानते हैं कि दाहिने हाथ को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, बाएं हाथ से कम 1 फीट ज्यादा। पिछले कई सालों में किसी ने फोरमैन के प्रति ऐसा असम्मान नहीं दिखाया था।
मोहम्मद अली अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
मैं फोरमैन को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मैं उसके दिल की धड़कनों तक को साफ सुन सकता हूं। उसकी सांस भी रुक रुक कर आ रही है, जो संकेत इस बात का है कि मेरे मुक्के काम कर रहे हैं। मैं उससे फुसफुसा कर कहता हूं, यू आर इन बिग ट्रबल बॉय, अपनी आंख की ओर देखो, फूल कर कुप्पा हो गई है और अभी 8 राउंड बाकी हैं, 8 और। और देखो तुम कितने थक गए हो, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और तुम हांफने लगे हो। सैडलर पीछे से फोरमैन से कुछ कहना चाह रहा है, आर्चो मूर भी चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे पता है इस समय फोरमैन सिर्फ मेरी ही सुन रहा है।
जैसे ही 8वां राउंड शुरू हुआ, अली ने नोट किया कि फोरमैन के मुक्कों की गति धीमी पड़ चुकी है। अली ने पूरी ताकत लगाकर फोरमैन के जबड़े पर स्ट्रेट राइट रसीद किया। पूरे स्टेडियम ने स्तब्ध होकर देखा कि फोरमैन स्लो मोशन में जमीन की तरफ गिर रहे हैं।
Suddenly, Ali, who had hit him a couple of times, took like 2 steps off the ropes, and he hit him, and he hit him again, and then he was back in the corner, and Foreman, more frustrated, now is having trouble, in my view, lifting his arms.
अचानक अली ने रस्सों से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए और फोरमैन को बहुत तेज मुक्का मारा। फिर उन्होंने राइट और लेफ्ट हुक के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। जब अली का दूसरा राइट फोरमैन के जबड़े पर पड़ा तो हम सब ने रुकी हुई सांसों के साथ देखा कि फोरमैन धराशायी हो रहे हैं। मैंने इससे पहले किसी को स्लो मोशन में इस तरह से गिरते नहीं देखा था।
इस मुकाबले के बाद मोहम्मद अली करीब 4 सालों तक विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे, और तब तक उनकी तरह पूरी दुनिया भी ये मान चुकी थी कि मोहम्मद अली वास्तव में महानतम थे। Catch me if you can. Rehan Fadel, BBC, Delhi.
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कहा है कि वो कैटलोनिया की संसद को भंग कर रहे हैं। रखॉय ने कैटलोनिया में नई संसद के लिए फिर से चुनाव कराए जाने की बात कही। रखॉय ने कहा कि हालात सामान्य करने के लिए कैटलोनिया पर स्पेन का सीधा शासन जरूरी था। अब कैटलोनिया में 21 दिसंबर को फिर से चुनाव होंगे। इटली में एक व्यक्ति को खुद के HIV संक्रमित होने की जानकारी के बाद जानबूझकर 30 महिलाओं को HIV संक्रमित करने के मामले में 24 साल की सजा सुनाई गई है। केनिया में चुनाव आयोग का कहना है कि जिन 4 प्रांतों में शनिवार को चुनाव कराया जाना तय हुआ था, अब वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया मानसी दास ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।